साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से मैं जिला समन्वयक दिनकर पातुकर। आज छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच पर एक ऐसी शख्सियत रूबरू होने जा रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हाँ साथियों, आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे पिछली सरकार अभियान के प्रणेता एवं पूर्व निदेशक नेहरू केंद्र से डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी को। नमस्कार सर जी।
नमस्कार। नमस्कार सर जी।
सर जी, आज छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच पर आपका स्वागत है
जी, जी।
और हम आपसे जानना चाहते हैं सर जी कि तीसरी सरकार अभियान आपके माध्यम से जो चलाया जा रहा है, इसकी प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली?
तीसरी सरकार अभियान जो पंचायतों के संस्थागत विकास का एक लोक अभियान है, इसकी प्रेरणा बहुत लड़कपन से मिलना शुरू हो गई थी। जब लड़कपन में पंचायतों को मैंने देखना शुरू किया, पंचायतों के अनुभव होने लगे गांव में, और उसकी कार्यप्रणाली देख करके, उसके निर्णय देख करके सभी से लगने लगा था। और बाद में फिर उसकी रुचि बढ़ी तो मेरा अध्ययन भी उसमें हुआ। फिर नेहरू युवा केंद्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए जब गाँव के विकास के लिए जुड़ना हुआ, तब पंचायतों का महत्व समझ में आया। तो ये प्रेरणा तो शुरू से मिलती रही, लेकिन बीच में लगा कि पंचायतें जो वन मैन शो बन करके रह गई हैं, उनको कैसे एक इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए, जो संविधान चाहता है और जो देश के लिए बहुत जरूरी है। तो उसकी प्रेरणा हुई और उसी प्रेरणा के साथ लगा कि इस काम को प्राथमिकता के स्तर पर लेना चाहिए। और इसके लिए फिर मैंने अपनी सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी बीआरएस लिया, और बीआरएस लेकर के 2013 में लिया था और 2014 से इसको फिर शुरू किया। सरकार
सर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा का क्या महत्व है और क्या अधिकार है?
वास्तव में ग्राम सभा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पंचायत में जो नई पंचायती राज व्यवस्था है उसमें गांव के स्तर पर दो संस्थाओं के प्रावधान किए गए। एक संस्था है ग्राम सभा और दूसरी है ग्राम पंचायत। इसको जैसे हम कह रहे हैं कि ये भी तीसरी सरकार है, तो अगर सरकार से हम इसकी तुलना करें ऊपर की पहली और दूसरी सरकार से, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, तो जो स्थान लोकसभा का है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो स्थान विधानसभा का है, वही गांव सरकार में वो स्थान ग्राम सभा का है। अर्थात ग्राम सभा जो है वो नीतिगत निर्णय लेने का, जैसे संसद नीतिगत निर्णय लेती है उसके लिए, विधानसभा राज्यों के लिए लेती है, ठीक उसी तरह ग्राम सभा को बनाते समय उसके पीछे की जो मंशा थी उसका ये था कि ये जो ग्राम सभा है वो गांव के बारे में निर्णय का अधिकार है, और विशेष करके जो मूलभूत निर्णय है गांव के विकास के, गांव के प्रशासन के, उसमें ग्राम सभा। तो एक तो ग्राम सभा विधायिका है, एक तरह से हम कह सकते हैं ग्राम सभा का जो महत्व है विधायिका है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्व ये है कि भारत का जो गांव है ना वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, वो भारत एक शब्द प्रयोग किया जाता है गांव समाज का, अर्थात गांव में समाज भी है और सरकार राज्य भी सरकार भी है। तो समाज और सरकार, तो आप ये कह सकते हैं ग्राम सभा जो है गांव का समाज है और ग्राम पंचायत गांव की सरकार है। आप इस रूप में इसको चिन्हित कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में गांव के जितने वयस्क नागरिक हैं, जो मतदाता होते हैं, उन सबको मिला करके ग्राम सभा बनती है और निर्णय का उनको अधिकार मिलता है। तो स्वाभाविक है कि गांव के अंदर जो निर्णय होगा गांव सरकार का, वो निर्णय गांव के सारे लोग लेकर। और दूसरी बात यह है कि वो जो गांव का वयस्क नागरिक है वही देश का मालिक है, वही पहली और दूसरी सरकार भी बनाता है, लेकिन वहां पर अपना प्रतिनिधि भेजता है, यहाँ वो स्वयं मौजूद रहता है, मालिक यहाँ खुद बैठा है, यहाँ का निर्णय मालिक स्वयं ले रहा है, उसका प्रतिनिधि नहीं दे रहा, कोई एमएलए एमपी नहीं दे रहा है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरी चीज ये है कि हम कहते हैं कि जनता सरकार, ये लोकतंत्र में जनता सरकार हो, तो सरकार होने का मतलब है निर्णय लेने का अधिकार, जो घर से मालिक वही होता है जो निर्णय लेता है। तो जैसे घर का मालिक जो निर्णय लेता है घर में उसको कहते हैं घर का मालिक है। तो मालिक का मतलब ही निर्णय लेने का, जो निर्णय लेता है। तो जब ग्राम सभा में वयस्क नागरिक बैठकर गांव के बारे में निर्णय लेने लेता है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने मालिक होने के अधिकार में होता है या मालिक होना उसका सिद्ध हो जाता है, सरकार होना उसका सिद्ध हो जाता है, जो कि पहली और दूसरी सरकार में संभव ही नहीं है, वहां तो उसका प्रतिनिधि लेता है। तो यहाँ पर ये उसका सबसे ज्यादा महत्व है, एक चीज। दूसरा जो महत्व है कि लोकतंत्र में नागरिक, जो लोकतंत्र होता है उसमें नागरिकों को दो अधिकार मिलता है, एक तो सरकार बनाने का अधिकार मिलता है जिसको हमें इलेक्शन कहते हैं, और दूसरा सरकार चलाने का भी अधिकार होता है जिसको गवर्नेंस कहते हैं, शासन कहते हैं। तो पहली और दूसरी सरकार को बनाने में, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बनाने में तो जनता का मतलब नागरिक का योगदान है, लेकिन उसको चलाने में कोई योगदान नहीं है। लेकिन गांव सरकार में ग्राम सभा के माध्यम से गांव का वयस्क नागरिक सरकार चलाने का भी अधिकार रखता है, निर्णय वही लेता है, जिस गांव इस सरकार का निर्णय क्या होगा वो लेता है। इसलिए ये दूसरा उसका महत्व है। तीसरा ये है कि वास्तव में आज की तारीख में जो भारत का गांव समाज था उसकी जो सामुदायिक साथी भाईचारा था, मिलजुल करके रहने की परंपरा थी, सहमत के आधार से समाज चलता था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ग्राम सभा वो प्लेटफॉर्म है जहां हम गांव समाज के पुनर्जागरण की बात कर सकते हैं, मान सकते हैं कि गांव समाज जो है वो पुनर्जागृत हो सकता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आपस में संवाद हो सकता है, सहमति बनती है, सामान्यतः आपस में जब सहमति बनती है तो गाँव समाज की विशेषता है, फिर सहयोग तय होता है, सहयोग से फिर एक सहकार होता है और फिर सहभाव। ये पांच तत्व होते थे जिसको पंचायतें संरक्षित करती थी गांव समाज में, संवाद का, सहमति का, सहयोग का, सहकार का और सहभाग का। और इसका अवसर इस नए युग में अगर मिल सकता है तो ग्राम सभा पर, ग्राम सभा पर। तो इसलिए ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो सबसे है कि इसके माध्यम से गांव के लोगों को अपनी सामर्थ्यता से पता चलता, अरे उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है, और जैसे निर्णय के अधिकार के साथ मालिकाना हक आ जाता है, ओनरशिप आ जाता है, तो उन्हें देश के बारे में, जब गांव के बारे में ओनरशिप पाएगी तो देश के बारे में ओनरशिप पाएगी, मालिक का स्वामित्व का भाव आएगा, तभी देश अपना लगेगा। जो अपनापन आता है वो स्वामित्व के भाव के साथ, तो देश अपना लगने लगेगा। तो ये ग्राम सभा नागरिकों का शिक्षण भी करेगी और साथ ही साथ उन्हें उसके सामर्थ्य का भी एहसास करेगी। और अंत में जैसे मैं कह रहा था, यहाँ आकर संस्कृति और संविधान दोनों युक्त हो जाते हैं। हम संस्कृति कहते हैं तो समाज है, समाज की संस्कृति होती है और राज्य का संविधान होता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ राज्य भी है और समाज भी है, दोनों या एकाकार हो जाते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो ये एक बहुत बड़ा होता है, बहुत महत्व है, महत्व को समझने की
आवश्यकता। जैसा कि इतने अधिकार संपन्न होने के बावजूद भी देखने में आता है कि ग्राम सभाओं में ग्राम सभा के सदस्य यानी कि ग्रामीण नहीं पहुंचते, इसके पीछे क्या कारण है?
एक तो दो चीजें हैं, हम ये जो इसके अधिकार और जो स्थितियां बता रहे थे, मैं उसके एक आइडियल चित्र को रख रहा था, ग्राम सभा का आइडियल चित्र क्या, लेकिन वास्तव में इसमें जो पहली गड़बड़ी हुई अधिकार को लेकर के, वो संविधान संशोधन में ही कमी है। 73वां संविधान संशोधन है जिससे ये नया पंचायती राज आया, उसमें ग्राम सभा के बारे में जो प्रावधान किया गया है, बस अनुच्छेद के जो पार्ट है 243 अनुच्छेद का, उसके दो पार्ट, दो भाग जो है वो ग्राम सभा के बारे में है। पहला है कि लिखा, उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक जो ग्राम पंचायत क्षेत्र होगा, अर्थात एक एरिया में जहाँ ग्राम पंचायत का शासन बनेगा और ग्राम पंचायत का जो एरिया बनेगा, उस एरिया के में हर एरिया में एक ग्राम सभा, उन्होंने कहा वहां ग्राम सभा। तो पहला प्रावधान ये कह दिया। दूसरा प्रावधान ये किया कि ग्राम सभा को क्या अधिकार प्राधिकार होगा और क्या उसका दायित्व तो होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे, ये जो है ये राज्य का विधानमंडल तय करेगा। अब हुआ ये है कि देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति। उदाहरण के लिए आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए कि मध्य प्रदेश में जब 1995 से 2000 वाली जब पंचायती राज व्यवस्था थी, उस समय तो 2001 में वहां ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया था और ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ग्राम सभा को पूरी तरह से पावर दे दिया गया था। तो वहां ग्राम सभा को बहुत पावर दे दिया गया था। ये अलग बात है कि बाद में बहुत सारे पावर विथड्रॉ कर लिए गए, लेकिन उसी के बगल उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा को सिर्फ जैसे कहिए संविधान में सहयोग करेगी, सहायता करेगी, एक तरह से बिल्कुल उसको कोई उस तरह का पावर ही नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ से ये हो गया। तीसरा अगर देख लीजिए तो झारखंड की ग्राम सभा को बहुत सारा पावर है। वहां पर ग्राम सभा कुछ खुद अपनी समितियां बना सकती है मध्य प्रदेश की तरह। केरल में ग्राम सभा को बहुत सारा पावर है। तो बहुत सारे राज्यों में के अधिनियमों में ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए और बहुत सारे जगहों पर ना के बराबर दिए गए। तो जहां ना के बराबर दिया गया वहां तो ग्राम सभा का एकदम महत्वहीन हो गई। एक तो ये है। दूसरा ये है कि दूसरा ये एक दूसरा रीजन ये है कि वास्तव में ग्राम सभा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ग्राम सभा तो छोड़िए, ग्राम पंचायत के सदस्य कुछ नहीं, उसका रोल नहीं हो पा रहा है, वन मैन शो बन करके पंचायतें रह गई है। ऐसे में जब तक ठीक से जानकारी नहीं होगी और सूचनाएं ठीक से नीचे तक नहीं जाएंगी, तब तक ग्राम सभा के महत्व को गांव वाला समझेगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा, उसको समझाया ही नहीं जा रहा है, उसके अस्तित्व का बोध ही नहीं कराया जा रहा है। इसलिए वो दूसरा बैठकें होंगी, जो बैठक हो रही है उसकी भी ठीक से जानकारी नहीं जा रही, लोगों को बहुत शिकायत है बैठक में। दूसरा ये है कि जब ये मालिकाना भाव ही लोगों का नहीं जगा है, उनमें ओनरशिप ही उसके प्रति नहीं है, निर्णय में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, तो आप स्वाभाविक रूप से जानिए कि ग्राम सभा में वही लोग जाएंगे जिनको लाभ मिला, अर्थात ग्राम सभाओं में लाभार्थी तो जाता है। लाभार्थी मीन्स ये हुआ कि मान लीजिए अभी सूचना हो गई कि अच्छी ग्राम सभा बैठेगी और गरीबी रेखा वालों का नाम लिखा जाएगा, गरीबी रेखा का नाम वो होगा, लिस्ट बनेगी, तो जिनको नाम लिखाना है वो पहुंच जाएंगे, जिनको जानकारी मिल जाएगी, बाकी सारे गांव वाले कहेंगे हमसे ग्राम सभा से क्या मतलब है। तो ये जो लाभार्थी ही ग्राम सभाओं में जा रहा है, मालिक के रूप में ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य के रूप में जो इस तरह से विधायक है, मतलब हर नागरिक विधायक हो जाता है, वो विधि बना सकता है, विधि का कर्ता हो जाता है, निर्णय लेने वाला हो जाता है, ये नहीं हो। दूसरे ग्राम सभाओं के आकार बहुत ज्यादा, कहीं कहीं तो ग्राम पंचायत है देश में 10-10 हजार 15-15 हजार की आबादी पर है, और आप कल्पना कर सकते हैं 60% मतदाता होता है तो 9000-10000 मतदाता है। इतनी बड़ी ग्राम सभा, 9000 की ग्राम सभा कभी बैठ सकती है क्या? उसका कोरम ही नहीं पूरा होता तो उसका निर्णय नहीं हो पाता, ये उसका है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा राज्य के अधिनियमों में अभी उस तरह से ग्राम सभा को प्रमोट नहीं किया, जब यहाँ किया गया मध्य प्रदेश में ग्राम सभा को, तो इत्तेफाक है कि उसके बाद चुनाव आ गया और चुनाव आने के बाद तक वो तैयारियां नहीं हो पाई, तो पता चला कि ग्राम सभा को जो अधिकार दिया गया वही उल्टा पड़ गया, क्योंकि सरपंचों को लगा कि अरे मेरे अधिकार छीन करके ग्राम उनको दे दिया गया, ग्राम सभा को लोगों को दे दिया गया, तो उसका रिएक्शन देखने को मिला। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी जागरूकता के स्तर पर, एडवोकेसी के स्तर पर, जहां जाकर बहुत बीच में जाकर समझने और समझाने की आवश्यकता है, इसकी बहुत आवश्यकता है सब ग्राम सभा। जी
सर जी, जैसा कि देखने में आता है कि स्थानीय संसाधन जो होते हैं, चाहे मान लो रेत हो, डोलामाइट हो, वन हो, इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो इन स्थानीय संसाधनों का ग्राम विकास योजनाओं में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा किस तरह उपयोग ले सकती है?
नहीं, वास्तव में अभी अब देखिए पंचायतों को दो अधिकार दिया गया संविधान में, दो अधिकार दिया पंचायती राज व्यवस्था को, एक अधिकार दिया था कि एक दायित्व सौंपा था, उसी दायित्व के लिए उसको सरकार के रूप में, पहला दायित्व था कि वो अपने क्षेत्र की, अर्थात वो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र की, ब्लॉक पंचायत है तो ब्लॉक पंचायत क्षेत्र की, जिला पंचायत है तो जिला पंचायत क्षेत्र की, वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाएगी, पहला दायित्व उसका ये था, संविधान द्वारा दिया। दूसरा दायित्व उसको ये सौंपा गया है है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं होगी उसको क्रियान्वित करेगी। तो आज तक उससे सिर्फ ये क्रियान्वयन के काम करवाए जा रहे हैं, योजना बनाने का जो काम शुरू हुआ है 2015 से ग्राम पंचायत विकास योजना जिसको डीपीडीसी कहते हैं उसके माध्यम से एक शुरुआत हुई। और ये जो केंद्र मतलब भारत का जो वित्त आयोग है उसने कुछ फंड उसके लिए सुनिश्चित किया, 2,00,000 करोड़ रुपया दिया था 14वें वित्त आयोग में, लगभग 2,25,00,000 करोड़ रुपया दिया गया है 15वें वित्त आयोग। तो उस वित्त आयोग की तरफ से उनका हिस्सा आवंटित किया गया और कहा गांव के लेवल पर आप प्लान बनाइए, उस प्लान में लोकल रिसोर्सेज को भी जोड़ने की बात। वास्तव में जब हम स्थानीय संसाधन कहते हैं तो स्थानीय संसाधनों को हमें 4-5 रूपों में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हो क्या रहा है स्थानीय संसाधन को अभी गांव के स्तर पर ठीक से समझाया नहीं जा रहा है ना। गांव मैंने कहा कि इसको लेकर ये सब नए तरह की परिकल्पनाएं हैं, पुरानी परिकल्पना में गांव तो अपने ही संसाधनों से सब कुछ करता था। आप देखिए कि गांव में सारी खेती या कहीं बाहर से संसाधन आते थे, गांव का व्यापार, गांव में सारे कृषि के काम जो मुख्य जरूर अपनी आवश्यक जो सब स्थानीय संसाधनों से ही खड़े होते थे। हमने वो पुरानी तरह की समझ और पुरानी तरह की परिस्थितियां थी, आज बदली हुई परिस्थितियों में नई जानकारी के साथ ये जो वैज्ञानिक प्रगति है, गांव को बहुत सारी सूचनाओं की आवश्यकता है, जानकारियों की आवश्यकता है, वो उन तक नए सिरे से नहीं पहुंचा पा रहा, इसलिए हो रहा है। अब आप देखिए अगर गांव में देखें तो बहुत सारे भौतिक संसाधन, कहीं पर कोयला है, कहीं पर कुछ है, मतलब बहुत सारे जिसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ से लेकर के तालाब से लेकर जमीन पेड़ और जो खदाने हैं सब ये बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन और एक साधारण सा गांव ले लें हम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का, तो प्राकृतिक संसाधन तो भरे पड़े हैं, अब उसका हम जानते भी नहीं थे कि उसका उपयोग अभी नए सिरे से करने की स्थिति में नहीं, जबकि गांव पहले इसका बहुत अच्छा उपयोग करता था अपना सब कुछ इसी के माध्यम से। दूसरे ये है कि मानव संसाधन, अब गांव में मानव संसाधन को चिन्हित करना पड़ेगा इसको बहुत गहराई के साथ। मानव संसाधन दोनों तरह के है, किसी के पास अगर शारीरिक ताकत है उसका श्रम है तो उसकी बुद्धि भी है, उसकी टेक्नोलॉजी भी है, बहुत तरह जो भी है उनके कुछ के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा गांव में अच्छे हैं, वो सब गांव के विकास में वो बन सकते हैं। आर्थिक संसाधन तो है ही है, तमाम तरह के नए स्थानीय आर्थिक संसाधन विकसित किए जा सकते हैं, और जन सहयोग सबसे बड़ा संसाधन होता है स्थानीय स्तर पर। तो स्थानीय संसाधनों की बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे उसके अनुभाग, उन सारी चीजों को जब जोड़ करके आगे, इसीलिए कहा गया है जीपीडीसी में वो कुछ संसाधन है जो स्कीमों के माध्यम से आ रहे हैं अलग अलग केंद्र और राज्य की, कुछ जो वित्त आयोग चाहे राज्य का वित्त आयोग हो, केंद्र का वित्त आयोग हो, भारत का वित्त आयोग हो, वो जो बजट कर रहा है, और दूसरे जो लोकल रिसोर्स, इन तीनों को मिलाकर जिनकी अभी मैं व्याख्या कर रहा था, इन तीनों को मिलाकर जब गांव का प्लान बनेगा तभी जाकर के सही होगा। इसलिए स्थानीय संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको समझना, उनका एक तरह से आकलन करना, आकलन करने के बाद उनका सदुपयोग करना, उनका एक तरह से सही ढंग से उनका उपयोग किया जा सके, इसके लिए प्रशिक्षण, इसके लिए जानकारी, लोगों के बीच में बैठ के, और ये सारा काम जैसे केरल में आज जो हम पंचायतों के उसके पीछे का यही था कि वहां पर जब योजना बनाने की बात आई तो इससे पहले योजना के बारे में जानकारी लेकर और पीपल पार्टिसिपेशन कैसे होगा इस पर 3 साल तक बहुत गहरा फैसला। अभी और कहीं राज्यों में इस तरह की कोशिश नहीं रही है। जी
सर जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न, वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहा, और ऐसा कोई अविस्मरणीय क्षण जो जनहित में आपकी किसी सरकार के माध्यम से किया गया हो?
वास्तव में 2022 हमारे लिए बड़ा, हम लोगों के लिए बड़ा रोमांचकारी रहा। सबसे पहले तो 2022 में अप्रैल, मार्च और अप्रैल महीने में बहुत पहला ही रहा, उस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई। आप देखिए 26 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश में पंचायतों का नोटिफिकेशन जारी था पंचायत चुनाव का। उससे पहले 2015 में पंचायत चुनाव हुआ था, तो मैं बता रहा हूँ तीसरी सरकार अभियान 2014 से शुरू हो गया था। तो 2015 में हमने देखा कि जब पंचायत चुनाव चल रहा था तो पूरे देश में पूरे प्रदेश में जितने अखबार थे उनमें एक ही चीज आता था कि प्रधानी का चुनाव कराए, जैसे आपके यहाँ सरपंच मध्य प्रदेश में कहते हैं, उत्तर प्रदेश में उसको प्रधान कहते हैं, तो प्रधानी का चुनाव, यहाँ तक कि पंचायत का चुनाव हो रहा था ये भी मीडिया में, मतलब वो सरपंच या प्रधान को ही केंद्र में रखता था और उन्हीं को हीरो बना करके कहता था, उन्हीं का पूरे चुनाव को उनके नाम से था। लेकिन 2022 को मुझे याद है 26 मार्च 2022 को अधिसूचना जारी हुई है और 27 मार्च को उत्तर प्रदेश के सारे अखबार चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, दैनिक भास्कर हो, सब में जो फ्रंट पेज थी, पहले पेज थी, जो हेडिंग लगी थी वो लगा था गांव सरकार का चुनाव। ये देखते ही हम लोगों के लिए बेहद प्रसन्नता और उत्साह था कि हम 5 साल तक पूरे उत्तर प्रदेश में यही संघर्ष करते रहे कि पंचायत भी सरकार है, जो तीसरी सरकार है इसके सरकार के रूप में, और जब मीडिया ने उसको गांव सरकार करके संबोधित किया तो हम सब लोगों को लगा कि बहुत, मतलब एक बड़ी बात, एक तो ये 1922 में जो पहला हम लोगों के लिए खुशी की बात थी या रोमांचकारी बात थी, दूसरा ये कि जब चुनाव हो गया तो उसके बाद वार्ड मेंबर जो बनते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, हम लोगों ने पूरा कैंपेन और तीसरी सरकार इस समय दो चीजों पर फोकस कर रही है, एक ग्राम पंचायत सदस्यों पर, क्योंकि अगर पंचायत को वन मैन से अलग हट करके उसे एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, संस्था बनानी है, संवैधानिक संस्था के रूप में विकसित करना है तो सदस्यों को जागरूक, सदस्यों से ही संस्था बनती है, तो हमने ये देखा कि हम लोगों की कैंपेन का ये परिणाम हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम बीए किए हुए, एमटेक किए हुए, बीटेक किए हुए, एलएलबी किए हुए और पत्रकार लोग, शिक्षक लोग वार्ड मेंबर, ग्राम पंचायत सदस्य, और लोगों ने फोन कर करके बताने लगे कि हम तो आपका वीडियो देख करके और आप लोगों का कैंपेन देख करके हम तो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और जीत गए, आप बताइए हम क्या। तब हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम इनको अलग से प्रशिक्षित, और अभी तक लगभग 10,000 सदस्यों को प्रशिक्षित किया है। ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि आज बिहार में, झारखंड में, इवन अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ये रोल, राजस्थान में, सब जगह हम लोगों ने वार्ड मेंबरों पर फोकस किया, वार्ड सभाओं को एक्टिव करने का काम कर रहे हैं ग्राम सभा के साथ साथ, क्योंकि ग्राम सभा को अगर मजबूत करना है तो वार्ड सभाओं को मजबूत, तो ऑटोमेटिक ग्राम सभाएं मजबूत हो गए, तो ये एक कैंपेन शुरू हो रहा है और हम लोग इसमें मेजर अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, मुख्य रूप से इसी पर अपने को फोकस कर रहे हैं। जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका कि आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी राय साझा की, क्योंकि मोबाइल वाणी पर ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें आपका मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, इसके लिए छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी सहित मध्य प्रदेश मोबाइल वाणी, छत्तीसगढ़ मोबाइल वाणी, झारखंड मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से आभार आपके।